ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जल विद्युत परियोजना के लाइसेंस होल्ड करके काम न करने वालों का लाइसेंस खारिज करने का ऊर्जा मंत्रालय को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का निर्देश। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन प्रयोजन के लिए कुल जनसंख्या के 0.5% से कम संख्या वाली जातों को ही अल्पसंख्यक के रूप में तय करने का सरकार का निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्र आने वाले फागुन पहले हफ्ते में करेगी विधान सम्मेलन। और चीन के कोयला खदान में हुए हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने जल विद्युत परियोजना का लाइसेंस होल्ड का काम न करने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द करने का ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश किया। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय की संयुक्त समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि लाइसेंस लेकर होल्ड में रखने लेकिन काम न करने वाली बात देश के लिए खतरनाक है और सरकार को इसे लेकर लचीला नहीं होना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने संचार मंत्रालय को विज्ञापन से संबंधित नीति को सरल बनाने और संचार उद्योग की सुरक्षा के बारे में सोचने का निर्देश किया। बैठक में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत ने कहा कि जल विद्युत उत्पादन एवं खपत की दृष्टि से शीत ऋतु में आयात एवं वर्षा ऋतु में निर्यात करने की परिस्थिति है। वहीं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सरकारी मीडिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यक होमवर्क किया गया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने योजनाबद्ध शहर विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सिंह दरबार में आज आयोजित शहरी विकास मंत्रालय और वन तथा वातावरण मंत्रालय के संयुक्त विचार विमर्श में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि चूंकि शहर का योजनाबद्ध विकास दीर्घकालिक रणनीति के साथ लाया गया है, इसलिए इसे गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि विकास भौगोलिक संरचना के अनुसार होना चाहिए और एक ऐसे विकासशील देश की आवश्यकता है जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों को जोड़ता हो। विचार विमर्श में शहरी विकास मंत्री सीता गुरुंग ने परियोजनाओं की संख्या और बजट की सीमाओं के बीच काम करने की स्थिति बताते हुए कहा कि व्यवस्थित शहर बनाने की परियोजना को भी राष्ट्रीय गौरव की परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं वन तथा वातावरण मंत्री वीरेंद्र महतो ने कहा कि पेड़ों की कटाई की लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण विकास परियोजना का काम प्रभावित होता था और लकड़ी निर्यात की सीमा शुल्क नीति वैज्ञानिक नहीं थी, इसलिए मंत्रालय ने इसे हल करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि देश के राजनीतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रोलपा के विकास को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। बजट की कमी के कारण शहीद मार्ग के निर्माण में हो रही देरी के संबंध में रोलपा के सांसद एवं माओवादी केंद्र के उप महासचिव वर्षमान पून द्वारा प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में सौंपे गए ध्यानाकर्षण पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने शहीद मार्ग निर्माण के लिए तत्काल काम को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। सरकार ने राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए केवल उन जातियों को अल्पसंख्यक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है जिनकी आबादी कुल आबादी का 0.5% से कम है। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक में राष्ट्रीय जनगणना 2078 के आंकड़ों के आधार पर जिनकी आबादी कुल आबादी का 0.5% से कम रहे दलित के अलावा अन्य जातियों को अल्पसंख्यक के रूप में नामित करने का निर्णय किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सभा सदस्यों के लिए आगामी माह 11 गते चुनाव होने जा रहा है। इसी तरह आज की बैठक ने सरकारी कार्यालयों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निर्देशिका 2080 विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2079 और राष्ट्रीय बाल बालिका नीति 2079 स्वीकृत करने का निर्णय किया। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ ने नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित समारोह में प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ ने नवनियुक्त न्यायाधीशों सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौड़ेल, टेक प्रसाद ढुंगाना, सुनील कुमार पोखरेल और बालकृष्ण ढकाल को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसदीय सुनवाई समिति की कल की बैठक ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में 6 लोगों का नाम अनुमोदित किया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने आने वाले माह 11 गते होने जा रहे राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सभी प्रदेशों में एक एक मतदान स्थल तय किया है। आयोग ने कोसी प्रदेश के लिए प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर, मोरंग मधेश प्रदेश के लिए महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्र, जनकपुर धाम धनुषा, बागमती प्रदेश के लिए भूटन देवी मावी प्राविधिक शिक्षालय हेटौरा, गंडकी प्रदेश के लिए प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा, कास्की, लुम्बिनी प्रदेश के लिए कर्मचारी मिलन केन्द्र भवन घोराही, दांग कर्णाली प्रदेश के लिए प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत और सुदूर पश्चिम प्रदेश के लिए प्रदेश सभा भवन धनगढ़ी में मतदान स्थल तय किया गया है। प्रत्येक मतदान स्थल में दो दो मतदान केंद्र रहने के हिसाब से 7 मतदान स्थलों और 14 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। बता दें कि आज आयोग के प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौड़ेल ने विज्ञप्ति जारी कर तय किए गए मतदान स्थलों में प्रदेश सभा के लिए मतदान करने का तथा गांव पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा नगर पालिका के प्रमुख और उप प्रमुख के मतदान करने के लिए अलग अलग मतदान केंद्र तय होने की जानकारी दी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देवा ने कहा कि संविधान में मौजूदा समानुपातिक चुनाव प्रणाली के कारण किसी एक पार्टी के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा। आज जनकपुर धाम के तुरुतिया गाछी में नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश के प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष देवा ने कहा कि कांग्रेस और मधेस एक दूसरे के हमसफर है। आगे उन्होंने मधेस में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नेतृत्व करने का कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह किया। नेकपा माओवादी केंद्र ने आगामी फागुन के पहले सप्ताह विधान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री निवास वालवाचार में केंद्रीय अधिकारियों की हुई बैठक ने विधान सम्मेलन से पहले स्थायी समिति और केंद्रीय समिति की बैठक बुलाने का निर्णय किया। प्रवक्ता सापकोटा ने बताया कि पार्टी के विधान सम्मेलन की तैयारी के लिए मसौदा कानून तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसी तरह बैठक में पार्टी का विशेष परिवर्तन अभियान सफल होने का निष्कर्ष निकाला गया। बैठक ने देश भर में पालिका स्तर में जन परिचालन सहित इसी पूछ 16 गते पार्टी परिवर्तन अभियान को समाप्त करने का भी निर्णय किया। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद ने कहा है कि 100 साल पहले नेपाल ने ब्रिटेन के साथ जिस मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था वह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो अतीत में किया गया था। नेपाल ब्रिटेन मित्रता संधि की 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर परराष्ट्र मंत्री साउद ने उल्लेख किया कि नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मित्रता 2 शताब्दी पहले सन 1816 में स्थापित हुई थी और इसी संधि से दोनों देशों के बीच मित्रता और विश्वास मजबूत हुआ था। यह कहते हुए कि संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से नेपाल ब्रिटेन संबंधों ने एक बड़ी छलांग लगाई। नेपाल और श्रीलंका के बीच व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के साथ साथ आपसी हितों के सभी मामलों पर विचार विमर्श हुआ। आज काठमांडू में आयोजित नेपाल श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक में व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क का विस्तार, संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क पर विचार विमर्श हुआ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन की कोयला खदान में एक बार फिर से भयानक हादसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हेईलुंग जियांग प्रांत में मौजूद कोयले की खान में दुर्घटना के कारण 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीन के सरकारी मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कोयले की खदान में काम करने वाले वर्कर खनन गाड़ी में मौजूद थे। यह गाड़ी पटरी से उतर गई और यह हादसा हो गया। यह दुर्घटना बुधवार को जिक्शी शहर की कुयुयान खदान में हुई। चीनी मीडिया ने इस हादसे की सूचना एक दिन बाद दी। स्थानीय रिपोर्टर्स के अनुसार घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। हादसे में हुए कुछ श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। चीन में अगस्त माह में भी शाक्षी प्रांत में कोयला खदान में विस्फोट की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले महीने सांक्सी में ही एक कोयला खनन कंपनी की इमारत में भीषण आग लगने की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल चीन में हुई 168 दुर्घटनाओं में 245 लोगों की मौत हो गई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल विद्युत परियोजना के लाइसेंस होल्ड करके काम न करने वालों का लाइसेंस खारिज करने का ऊर्जा मंत्रालय को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का निर्देश। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन प्रयोजन के लिए कुल जनसंख्या के 0.5% से कम संख्या वाली जातों को ही अल्पसंख्यक के रूप में तय करने का सरकार का निर्णय। नेकपा माओवादी केंद्र आने वाले फागुन के पहले हफ्ते में करेगी विधान सम्मेलन। और चीन के कोयला खदान में हुए हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।